अध्याय 52 उपसंहार। जब सिदकिया राजा बना तो वो 21 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 11 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम हमूटल था। वो लिबनावासी यिर्मियाह की पुत्री थी। उसने यहोयाकीम की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। यरूशलेम और यूदा पर प्रभु इतना क्रुद्ध था कि उसने इन्हें अपने सामने से दूर करने का निश्चय किया। उस समय सिदकिया ने बाबुल के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया। उसके शासनकाल के 9वें वर्ष 10वें महीने के 10वें दिन बाबुल का राजा नबूकदनेज़र अपनी समस्त सेना के साथ यरूशलेम पर आक्रमण करने आया। ये घेराबंदी सिदकिया के राज्यकाल के 10वें वर्ष तक बनी रही। उस वर्ष के 4थे महीने के 9वें दिन नगर की चार दीवारी में दरार की गई, क्योंकि नगर में अकाल पड़ा था और खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं रह गया था। यद्यपि खलदई नगर के चारों ओर पड़े हुए थे, फिर भी सब सैनिक राजकीय उद्यान की दो दीवारों के बीच वाले फाटक से रात को नगर से बाहर निकले और अराबा की ओर भाग गए। खलदई सैनिकों ने राजा का पीछा किया और यरीखो के मैदान में सिदकिया को पकड़ लिया। उसकी सारी सेना उसे छोड़कर तितर बितर हो गई। उन्होंने राजा को बंदी बना लिया और वे उसे बाबुल के राजा के यहां हमात देश के रिबला ले आए तथा उसने उसे दंडाज्ञा दी। उसने सिदकिया के पुत्रों को अपने सामने मरवा डाला और यूदा के सभी राज्याधिकारियों का भी वध रिबला में करवा दिया। उसने सिदकिया की आंखें निकलवा दी और उसे कांसे की बेड़ियों से बंधवा दिया। बाबुल का राजा उसे बाबुल ले गया और उसे मृत्यु के दिन तक बंदीगृह में रखा। बाबुल के राजा नबूकदनेज़र के राज्यकाल के 19वें वर्ष 5वें महीने के 10वें दिन अंग रक्षकों के नायक और बाबुल के राजा के सेनापति नबूजर आदान ने यरूशलेम में प्रवेश किया। उसने प्रभु का मंदिर, राजा का महल और यरूशलेम के सब घर जला दिए। उसने यरूशलेम के सब बड़े भवन भस्म कर दिए। अंगरक्षकों के नायक के साथ जो खलदई सेना आई थी, उसने यरूशलेम की चार दीवारी गिरा दी। नगर के कुछ सबसे गरीब लोगों को, नगर में छूट गए निवासियों को, जो लोग बाबुल के राजा के समर्थक बन गए थे और जो भी कारीगर शेष रह गए थे, उन सबों को अंगरक्षकों के नायक नबूजर आदान ने निर्वासित किया। किंतु रक्षा दल के नायक नबूजर आदान ने देश के कुछ सबसे गरीब लोगों को दाख बारियों और खेतों में काम करने के लिए छोड़ दिया। खलदईयों ने प्रभु के मंदिर के कांसे के खंभे तथा प्रभु के मंदिर के ठेले और कांसे का हौज टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनका कांसा बाबुल ले गए। वे बर्तन, फावड़ियां, कैंचियां, छिड़काव पात्र, कटोरे और कांसे के सब सामान ले गए जो मंदिर की सेवा के काम आते थे। रक्षा दल का नायक प्याले, धूपदान, छिड़काव पात्र, बर्तन, दीपाधार, कटोरे और इत्रदान भी जो सोने और चांदी से बने थे उठाकर ले गया। सुलेमान ने प्रभु के मंदिर के लिए जो दो खंबे, हौज, उसके नीचे अवस्थित कांसे के 12 सांड और ठेले बनवाए थे, उनके कांसे का वजन इतना अधिक था कि वो तोला नहीं जा सकता था। जहां तक खंभों का संबंध है, हर खंभे की ऊंचाई 18 हाथ थी, उसकी परिधि 12 हाथ और उसकी मोटाई 4 अंगुल थी और वो खोखला था। उसके ऊपर कांसे का शीर्ष था। प्रत्येक शीर्ष की ऊंचाई 5 हाथ थी। स्तंभ शीर्ष के चारों ओर कांसे की जाली और अनार थे। दूसरा खंभा भी ठीक इसी तरह का था। अलग अलग किनारों पर उभारदार अनारों की संख्या 96 थी। चारों ओर जाली पर लगे अनारों की कुल संख्या 100 थी। अंगरक्षकों के नायक ने प्रधान याजक सराया, दूसरे याजक सफन्या और 3 द्वारपालों को, एक खोजा को जो सैनिकों का प्रधान था, और राजा के 7 मंत्रियों को भी जो उस समय नगर में उपस्थित थे, बंदी बनाया। और इनके अतिरिक्त सेनापति के सचिव को, जिसने लोगों को सेना में भर्ती किया था, और देश के 60 व्यक्तियों को जो उस समय नगर में उपस्थित थे। अंगरक्षकों के नायक नबूजरादान ने उन्हें बाबुल के राजा के पास रिबला भेज दिया। बाबुल के राजा ने उन्हें हमात प्रांत के रिबला में मरवा डाला। इस प्रकार यूदा के लोगों को अपने देश से निर्वासित किया गया। नबूकदनेज़र जिन लोगों को बंदी बनाकर ले गया उनकी संख्या इस प्रकार है। सातवें वर्ष 3023 यहूदी, नबूकदनेज़र के 18वें वर्ष वो यरूशलेम से 832 लोगों को बंदी बनाकर ले गया। नबूकदनेज़र के 23वें वर्ष रक्षा दल का नायक नबूजरादान यहूदियों में 745 व्यक्तियों को बंदी बनाकर ले गया। इन सब लोगों की संख्या 4600 थी। यूदा के राजा यहोयाकीन के निर्वासन के 37वें वर्ष 12वें महीने के 25वें दिन बाबुल के राजा एविल मरोदाक ने अपनी राज्यारोहण के वर्ष यूदा के राजा यहोयाकीन को क्षमा कर दिया और उसे बंदी गृह से मुक्त कर दिया। उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और बाबुल में अपने साथ रहने वाले राजाओं में उसे सर्वोच्च स्थान दिया। यहोयाकीन ने अपने कैदी वस्त्र उतारे और वो अपने जीवन भर प्रतिदिन राजा के यहाँ भोजन करता रहा। जब तक वो जीवित रहा उसे मृत्यु के दिन तक राजा द्वारा उसकी दैनिक आवश्यकता के अनुसार नियमित भत्ता दिया जाता रहा।